अध्याय 17 याकूब का भागना और प्रवास। यह अध्याय उत्पत्ति 28:31 पर आधारित है। एसाव के क्रोध के कारण मृत्यु के डर से याकूब निराश्रित होकर अपने पिता के घर से चला गया, लेकिन अपने साथ अपने पिता के आशीर्वाद को ले गया। इसहाक ने उसके लिए वाचा की प्रतिज्ञा को नवीकृत किया और याकूब को उसका उत्तराधिकारी बनाकर उसे मेसोपोतामिया स्थित उसकी मां के परिवार से पत्नी लाने की आज्ञा दी। फिर भी अत्यंत अशांत मन से याकूब वीरान यात्रा पर निकल पड़ा। अपने हाथ में सिर्फ लाठी लिए उसे घुमक्कड़ असभ्य जनजातियों से जनपूर्ण देश के बीच से कई मीलों का सफर करना था। पश्चाताप और डर के कारण वो मनुष्यों से छुपता रहा ताकि उसका क्रोधित भाई उसे ढूंढ न पाए। उसे डर था कि उसने हमेशा के लिए उस आशीर्वाद को खो दिया जिसे परमेश्वर उसे देना चाहता था, और शैतान उस पर प्रलोभनों द्वारा हावी होना चाहता था। दूसरे दिन की संध्या में उसने स्वयं को अपने पिता के तंबुओं से बहुत दूर पाया। उसे लगा कि वह एक परित्यक्त था और यह जानता था कि उसके गलत मार्ग को चुनने के कारण यह विपत्ति उस पर आ पड़ी थी। निराशा का अंधकार उसकी आत्मा पर छा रहा था और वह प्रार्थना करने का भी दुस्साहस नहीं कर सका। वह इतना अकेला था कि उसे परमेश्वर की ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता का आभास हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। रोते हुए और अत्यंत दीनता के साथ उसने अपने पाप का अंगीकार किया और किसी ऐसे प्रमाण की विनती की जिससे उसे पता लगे कि उसे पूरी तरह छोड़ नहीं दिया गया है। लेकिन उसके बोझिल हृदय को चैन नहीं मिला। वह स्वयं में पूरा विश्वास खो चुका था और उसे डर था कि उसके पूर्वजों के परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था। उसकी कृपा अपने भटके हुए संदेही दास पर अभी भी बनी हुई थी। परमेश्वर ने सहानुभूतिपूर्वक वही प्रकट किया जिसकी याकूब को आवश्यकता थी, एक उद्धारकर्ता। उसने पाप किया था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के पक्ष में पुनः स्थापित होने के माध्यम को प्रकट रूप से देखा, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। यात्रा से थककर चूर पथिक एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर जमीन पर लेट गया। नींद में उसने एक उज्ज्वल जगमगाती सीढ़ी को देखा जिसका निचला हिस्सा जमीन पर टिका था और दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंच रहा था। परमेश्वर के दूत उस पर उतर चढ़ रहे थे और उसके ऊपर परमेश्वर का तेज था, और स्वर्ग से एक स्वर सुनाई दिया, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। वह जिस भूमि पर वह निराश्रित और निर्वासित की तरह लेटा था उसके और उसके वंशजों के लिए प्रतिज्ञाबद्ध की गई और उसे आश्वासन दिया गया, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यह वचन अब्राहम और इसहाक को दिया गया था और अब इसे याकूब के लिए नवीकृत किया गया, और फिर उसकी वर्तमान पीड़ा और अकेलेपन को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सांत्वना और प्रोत्साहन भरे शब्द बोले गए, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। परमेश्वर उन कुप्रभावों को जानता था जो याकूब को घेरे रहते और उन खतरनाक परिस्थितियों को भी जिनके प्रति वो आरक्षित होता। कृपा करते हुए परमेश्वर ने पश्चातापी पापी के सामने भविष्य को उजागर किया ताकि वह स्वयं के संदर्भ में ईश्वरीय योजना को समझ सके और षड्यंत्रकारियों और मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के साथ अकेले होने पर निश्चित रूप से आने वाले प्रलोभनों से स्वयं को बचा सके। उसके सामने स्थायी रूप से एक उच्च मापक था जो उसका लक्ष्य था, और परमेश्वर की योजना का उसके द्वारा संपन्न होने का ज्ञान उसे लगातार विश्वसनीयता के लिए प्रेरित करता। स्वप्न दर्शन में याकूब के सामने उद्धार की योजना प्रस्तुत की गई, पूरी तो नहीं लेकिन वे अंश जो उस समय उसके लिए आवश्यक थे। स्वप्न में दिखाई गई रहस्यमयी सीढ़ी वही थी जिसका उल्लेख मसीह ने नतनेल के साथ वार्तालाप के दौरान किया था। उसने कहा, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर से उतरते और ऊपर जाते देखोगे। परमेश्वर के राज के विरुद्ध मनुष्य के अतिक्रमण के समय तक परमेश्वर और मनुष्य के बीच स्वतंत्र रूप से संपर्क होता था, लेकिन आदम और हवा के पाप ने पृथ्वी को स्वर्ग से अलग कर दिया। जिससे कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से संपर्क न कर सके। लेकिन फिर भी जगत को अकेले व आशाहीन अवस्था में नहीं छोड़ा गया। सीढ़ी प्रतीक है मसीह का, जो संपर्क का नियुक्त माध्यम है। पाप द्वारा बनी खाड़ी को अपनी सामर्थ्य से सेतुबद्ध नहीं किया होता तो सहायक स्वर्गदूत पतित मनुष्य के साथ संपर्क करने में असमर्थ होते। मसीह दुर्बल और असहाय मनुष्य को अनंत शक्ति के स्रोत के साथ जोड़ देता है। ये सब याकूब को स्वप्न में बताया गया। हालांकि उसके विवेक ने प्रकाशित वाक्य के कुछ भाग को एकदम समझ लिया, लेकिन उसके महान और रहस्यमयी सत्य उसके जीवन भर का चिंतन था और उसकी समझ के लिए अधिक से अधिक खुलासा करता रहा। रात के गहरे सन्नाटे में याकूब अपनी नींद से जागा। उसके स्वप्न दर्शन की कांतिमान आकृतियां अदृश्य हो गई थीं। सुनसान पहाड़ियों की धुंधली रूपरेखा और उनके ऊपर तारागण से दीप्तिमान आकाश पर उसकी दृष्टि पड़ी। लेकिन उसे एक पवित्र आभास था कि परमेश्वर उसके साथ था। उस एकांत को एक अनदेखी उपस्थिति ने भर दिया। उसने कहा, निश्चय ही इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके ऊपरी सिरे पर तेल डाल दिया। महत्वपूर्ण घटनाओं को श्रद्धांजलि देने की रीति के अनुसार याकूब ने परमेश्वर की करुणा का एक स्मारक स्थापित किया, ताकि जब भी वह उस मार्ग से गुजरे वह उस पवित्र स्थान पर रुककर परमेश्वर की आराधना करे। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर का घर। बहुत कृतज्ञता के साथ उसने उस प्रतिज्ञा को दोहराया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा उसके साथ होगी, और फिर उसने ये पवित्र शपथ ली, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करें और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन रहेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब यहां परमेश्वर के साथ शर्तें नहीं रख रहा था। परमेश्वर उसे समृद्धि का आश्वासन दे चुका था, और ये शपथ परमेश्वर के प्रेम और कृपा के आश्वासन के लिए कृतज्ञता से पूर्ण हृदय का बहिर्प्रवाह था। याकूब को लगा कि परमेश्वर का उस पर अधिकार है और उसे ये बात माननी चाहिए, और उसे प्रदान किए गए ईश्वर की कृपा के विशेष प्रतीक बदले में कुछ मांगते थे। इसी तरह हमें दी गई हर आशीष हम पर की गई करुणा के कर्ता के प्रति प्रतिक्रिया की मांग करती है। हर मसीही को अपने बीते जीवन की प्रायः समीक्षा करनी चाहिए और धन्यवाद के साथ उन महत्वपूर्ण छुटकारों को याद करना चाहिए जो मसीह के माध्यम से उसे मिले थे। संकट के समय उसकी सहायता, सब कुछ अंधकारमय और भयानक प्रतीत होने पर उसके सम्मुख मार्ग निकालने में उपाय, जब वह बेहोश होने को था उसे तरोताजा करने में, इन सब को उसे स्वर्गदूतों की देखरेख के परिणामों की तरह मान्यता देनी चाहिए। इन असंख्य आशीषों को ध्यान में रखते हुए उसे कृतज्ञतापूर्ण व वशीभूत हृदय से प्रायः पूछना चाहिए, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? हमारा समय, हमारे तोड़े, हमारी संपत्ति उसी को समर्पित होना चाहिए जिसने विश्वास में हमें यह आशीष दी है। हमारे लिए मुक्ति का कोई भी कार्य किया गया हो या हम पर अप्रत्याशित दया की गई हो, तो हमें अपने आभार की अभिव्यक्ति न केवल शब्दों में वरन परमेश्वर के काम के लिए दान व उपहारों से करके परमेश्वर की अच्छाई का अंगीकार करना चाहिए। जैसे हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही हमें लगातार देते रहना चाहिए। याकूब ने कहा, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। क्या हमें, जो सुसमाचार के विशेषाधिकार और संपूर्ण प्रकाश का आनंद लेते हैं, परमेश्वर को उनसे कम देकर संतुष्ट होना चाहिए जिनके पास इतना प्रकाश नहीं था? नहीं, यदि वे आशीषें जिनका हम आनंद उठाते हैं उनसे ज्यादा हैं, तो क्या उसके परिणाम स्वरूप हमारे कर्तव्य नहीं बढ़ने चाहिए? लेकिन कितना कम है ये अनुमान उस अकल्पनीय मोल के उपहार व अथाह प्रेम का गणितीय नियमों, समय, धन और प्रेम के आधार पर आकलन करने का प्रयत्न कितना व्यर्थ है। मसीह के लिए दशवांश, आह, तुच्छ दान, शर्मनाक प्रतिदान उसके लिए जो बहुमूल्य था। कलवरी के क्रूस से परमेश्वर अनारक्षित समर्पण के लिए बुलाता है। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम है, परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। ईश्वरीय प्रतिज्ञाओं में एक नए अटूट विश्वास के साथ और स्वर्गदूतों की सुरक्षा और उपस्थिति से आश्वस्त याकूब ने पूर्वियों के देश उत्पत्ति 29 आयत 1 की ओर अपनी यात्रा को जारी रखा। लेकिन कितना भिन्न था यह आगमन लगभग 100 साल पूर्व अब्राहम के संदेशवाहक के आगमन से। वह सेवक बहुत से अनुचरों के साथ ऊँटों पर सवार व सोने चांदी के बहुमूल्य उपहार लेकर आया था। पुत्र एक अकेला पैरों से जख्मी यात्री था जिसके पास छड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। अब्राहम के सेवक की तरह याकूब भी कुएं के पास रुका और यही वह स्थान था जहां उसकी मुलाकात लाबान की छोटी बेटी राहेल से हुई। अब वह याकूब था जिसने कुएं से पत्थर हटाकर भेड़ों के झुंड को पानी पिलाकर सेवा की। उसके द्वारा अपनी रिश्तेदारी ज्ञात कराने पर उसका लाबान के घर में स्वागत किया गया। हालांकि वह खाली हाथ व अकेला आया था, कुछ ही सप्ताहों ने उसकी कर्मठता और कौशल का महत्व दिखा दिया और उससे रुकने के लिए आग्रह किया गया। तय हुआ कि राहेल का हाथ मांगने के लिए उसे 7 वर्ष की सेवा करनी होगी। प्राचीन काल में रीति के अनुसार विवाह के सत्यापन से पहले वर अपनी पत्नी के पिता को अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ धनराशि या संपत्ति के रूप में उसका समतुल्य देता था। इसे वैवाहिक संबंध के लिए जमानत माना जाता था। पिता अपनी पुत्रियों की प्रसन्नता के संदर्भ में उन पुरुषों पर विश्वास करना उचित नहीं समझते थे जिन्होंने एक परिवार के भरण पोषण के लिए प्रावधान नहीं किया हो। यदि उनके पास व्यवसाय का प्रबंधन करने और मवेशियों या भूमि का अधिग्रहण करने के लिए पर्याप्त मितव्ययिता और सामर्थ्य नहीं होता था तो ऐसा माना जाता था कि उनका जीवन निरर्थक होगा। लेकिन जिनके पास पत्नी के लिए कुछ भी देने को नहीं होता था उनको परखने के लिए एक परीक्षा का प्रावधान था। उन्हें उस पिता के लिए श्रम करने की अनुमति दी जाती थी जिसकी बेटी से वे प्रेम करते थे। समय की अवधि देय दहेज के मूल्य के आधार पर विनियमित की जाती थी। जब विवाह का प्रस्ताव रखने वाला अपनी सेवाओं में विश्वास योग्य होता और अन्य विषयों में योग्य साबित होता तो वह उस घर की बेटी को अपनी पत्नी के रूप में पा लेता और साधारणतया जो दहेज विवाह के समय पिता को मिलता था वह पुत्री को दे दिया जाता था। राहेल और लिया के मामले में स्वार्थी होकर लाबान ने उन्हें दिए जाने वाले दहेज को अपने पास रख लिया। मेसोपोतामिया से पलायन करने के पूर्व उसकी पुत्रियों ने इस बात का उल्लेख किया, उसने हमको तो बेच डाला और हमारी धनराशि को खा बैठा है।
यद्यपि इस प्राचीन परंपरा का कभी कभी दुरुपयोग होता था जैसा कि लाबान द्वारा किया गया, लेकिन इसके परिणाम फलदायक होते थे। जब विवाहार्थी को दुल्हन की प्राप्ति के लिए श्रम करना पड़ता था तो एक जल्दबाजी के विवाह से बचा जा सकता था और उसके प्रेम की थाह को और परिवार का भरण पोषण करने की योग्यता को परखने का अवसर मिल जाता था। हमारे समय में इसके विपरीत मार्ग चुनने से कई बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रायः ऐसा होता है कि विवाह से पूर्व भावी युगलों को एक दूसरे के स्वभाव और आदतों को जानने का बहुत कम अवसर मिलता है। और जहां तक नित्य जीवन का सवाल है, जब वो विवाह के समय अपनी रुचियों को एक करते हैं वे एक दूसरे के लिए लगभग अपरिचित होते हैं। कई बहुत समय पश्चात समझ पाते हैं कि वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं और उनके मेल का परिणाम होता है जीवन भर की असंतुष्टि। प्रायः पत्नी और संतानों को पति और पिता की भ्रष्ट आदतों या उसके आलस्य व अयोग्यता के कारण कष्ट उठाते हैं। यदि प्राचीन परंपरा के अनुसार विवाहार्थी का चरित्र विवाह से पहले परख लिया जाए तो अत्याधिक अप्रसन्नता को रोका जा सकता था। याकूब ने राहेल के लिए निष्ठापूर्ण सेवा के 7 वर्ष दिए और सेवा के वो साल उसे कुछ ही दिनों के बराबर लगे क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन स्वार्थी और लालची लाबान ने इतने उपयोगी सहायक को रोकने की इच्छौष्ट के कारण राहेल के स्थान पर लिया को स्थानापन्न कर एक निर्दयी छल किया। इस तथ्य को जान कि लिया स्वयं धोखेबाज की समर्थक थी, याकूब में यह भावना उत्पन्न हुई कि वह लिया से प्रेम नहीं कर सकता था। जब याकूब ने लाबान को क्रोधपूर्ण उलाहना दी तो लाबान ने राहेल के लिए उसे 7 वर्ष और सेवा करने को कहा और यह भी आग्रह किया कि वह लिया का परित्याग न करे, क्योंकि उससे परिवार का अपमान होता। इस तरह याकूब बड़ी कष्टपूर्ण व पीड़ादायक स्थिति में पड़ गया। अंततः उसने लिया को साथ रख राहेल से विवाह करने का निर्णय लिया। राहेल से वह अधिक प्रेम करता था और उसकी इस प्राथमिकता ने ईर्ष्या व द्वेष को उत्तेजित किया और लिया और राहेल की प्रतिद्वंद्विता के कारण उसका जीवन कटुता से भर गया। 20 वर्षों तक याकूब मेसोपोतामिया में रहा और लाबान की सेवा करता रहा, जो रिश्तों के बंधन को कोई महत्व न देकर इस संधि के लाभ को स्वयं के लिए सुरक्षित करने में लगा रहा। अपनी दोनों पुत्रियों के लिए उसने 14 वर्ष की मांग की और बची हुई अवधि में उसकी पगार 10 बार बदली गई। याकूब की सेवा परिश्रमी व विश्वसनीय थी। उनके अंतिम साक्षात्कार के दौरान लाबान से कहे वाक्य उसकी अथक जागरूकता का, जो उसने अपने कठोर श्रमसाध्य स्वामी के लाभ के लिए दी थी, विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास नहीं लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। रात दिन भेड़ बकरियों की चौकसी करना चरवाहे के लिए अनिवार्य था। उन पर चोरों और असंख्य दुस्साहसी असुरक्षित झुंडों में तबाही मचाने वाले जंगली जंतुओं का खतरा हमेशा बना रहता था। याकूब के पास लाबान के बहुसंख्य भेड़ बकरियों की देखरेख के लिए कई सहायक थे, लेकिन उन सबका दायित्व उसी पर था। वर्ष के कुछ महीनों में उसका व्यक्तिगत रूप से भेड़ बकरियों के साथ होना आवश्यक हो जाता था, ताकि ग्रीष्मकाल में वह उन्हें प्यास से और ठंड के महीनों में रात में पड़ने वाली ओस में नष्ट हो जाने से बचा सके। याकूब मुख्य चरवाहा था, उसके नीचे काम करने वाले दास उप चरवाहे थे। यदि कोई भेड़ खोती थी तो उसकी भरपाई मुख्य चरवाहे को करनी पड़ती थी, और यदि भेड़ बकरियां तंदुरुस्त अवस्था में न पाई जाती थीं तो उसका लेखा जोखा वह कठोरता से उप चरवाहों से लेता था, जिन्हें उनकी देखरेख का दायित्व सौंपा था। चरवाहे के देखभाल करने वाले और कर्मठ जीवन और उसके प्रभार को सौंपे गए असहाय प्राणियों के प्रति विनम्र करुणा को, सुसमाचार के सबसे अधिक अनमोल सत्यों को उदाहरण सहित समझाने के लिए प्रेरित लेखकों के द्वारा प्रयोग में लाया गया है। अपने लोगों के साथ उसके संबंध के संदर्भ में मसीह की तुलना चरवाहे से की गई है। पतन के पश्चात उसने अपनी भेड़ों का पाप के अंधेरे मार्गों में सर्वनाश को प्राप्त होना देखा। इन भटके हुओं को बचाने हेतु उसने अपने पिता के घर के गौरव और वैभव को छोड़ा। वो कहता है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लुटेंगी, फिर जाती जाती से लूटी न जाएंगी। यहेजकेल 34:16-22:28। उसकी आवाज उन्हें उसके बाड़े में लौट आने को पुकारती है। दिन को धूप से बचने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़। यशाया 4:6। भेड़ बकरियों के लिए उसकी देखभाल अथक है। वो निर्बल को प्रबल करता है, कष्ट का निवारण करता है, भेड़ों को अपनी बाहों में लेता है और अपनी गोद में उठाता है। उसकी भेड़ें उससे प्रेम करती हैं, वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराए का शब्द नहीं पहचानती। यूहन्ना 10:5। मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है। मुख्य चरवाहे मसीह ने अपनी भेड़ों का प्रभार अपने धर्म उपदेशकों को उपचरवाहों के तौर पर सौंपा है और वो उन्हें आज्ञा देता है कि वे उनमें वही रुचि रखें जैसी कि उसने रखी है। उसके द्वारा सौंपे गए प्रभार के पवित्र उत्तरदायित्व का आभास करें। उनसे उन्हें कर्तव्यनिष्ठ होने की, भेड़ों का भरण पोषण करने की, निर्बल को प्रबल करने की, मूछित होते हुओं को सचेत करने की और उन्हें भूखे भेड़ियों से बचाकर रखने की औपचारिक आज्ञा दी है। अपनी भेड़ों को बचाने के लिए मसीह ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया और वो अपने चरवाहों को उदाहरण के तौर पर इस तरह प्रकट किए हुए प्रेम की ओर संकेत करता है। लेकिन जो मजदूर है, जिसकी स्वयं की भेड़ें नहीं हैं, भेड़ों में वास्तविक रुचि नहीं होती, वो केवल लाभ के लिए श्रम करता है और केवल अपने लिए सोचता है। वो अपने प्रभार के स्थान पर केवल अपने लाभ पर ध्यान लगाता है और संकट की घड़ी में वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। प्रेरित पौलुस उपचरवाहों को समझाता है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं वरन परमेश्वर की इच्छानुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आर्दश बनो। पहला पत्रस 5:2-3। पौलुस कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िये तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। प्रेरितों के काम 20:28-29। जो भी कर्तव्यनिष्ठ चरवाहे के गल्ले में आए, दायित्व और देखरेख को अवांछनीय कार्य समझता है, उन्हें प्रेरित झिड़कता है, दबाव से नहीं वरन स्वेच्छा से, नीच कमाई के लिए नहीं वरन मन लगाकर। पहला पत्रस 5:2। ऐसे अनिष्ट दासों को मुख्य चरवाहा बिना हिचकिचाए सेवानिवृत्त कर देगा। मसीह की कलीसिया को लहू देकर खरीदा गया है और चरवाहे को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसकी देखरेख में दी गई भेड़ों का मोल अनंत त्याग है। उसे हरेक भेड़ को अनमोल मानना चाहिए और उन्हें स्वस्थ और समृद्ध अवस्था में रखने के प्रयत्नों से थकना नहीं चाहिए। जो चरवाहा मसीह के आत्मा से व्याप्त है, वो उसके आत्मत्याग के उदाहरण को अपनाएगा और अपने प्रभार के कल्याण के लिए लगातार श्रम करेगा और उसकी देखरेख में भेड़े उन्नति करेंगी।
सभी को अपनी सेवकाई का पक्का विवरण देने के लिए बुलाया जाएगा। स्वामी हर चरवाहे से पूछेगा, वह सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था कहाँ है? यर्मिया 13:20। जो निष्ठावान पाया जाएगा वह प्रतिफल प्राप्त करेगा। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, प्रेरित कहता है, तब तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। पहला पत्रस 5:4। जब याकूब ने लाबान की सेवा से थककर कनान लौटने का प्रस्ताव रखा, उसने अपने ससुर से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसे सेवा की है। लेकिन लाबान ने यह कहकर उससे रुकने का आग्रह किया, मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। उसने देखा कि उसके दामाद की देखरेख में उसकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। याकूब ने कहा, मेरे आने से पहले तुम्हारे पास थोड़ी सी थी, अब तुम्हारे पास बहुत अधिक है। लेकिन समय बीतने के साथ लाबान याकूब की समृद्धि के प्रति ईर्ष्यालु हो गया, क्योंकि याकूब बहुत धनवान हो गया। उसके पास बहुत मवेशी, बहुत से नौकर, ऊंट और गधे थे। लाबान के पुत्र भी अपने पिता समान ईर्ष्यालु थे और उनकी द्वेषपूर्ण बातें याकूब के कानों में पड़ीं। पिता याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि उसके प्रति पहले के समान नहीं है। याकूब को यदि एसाव से टकराव का भय न होता तो वह अपने चालाक संबंधी को बहुत पहले छोड़ चुका होता। अब उसे लाबान के पुत्रों से खतरे का आभास होने लगा, जो उसकी धन संपत्ति को अपना समझने लगे थे और उसे पाने के लिए वे हिंसक हो सकते थे। वह अत्यंत कष्ट और उलझन में था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि किधर जाए। लेकिन बैथेल की अनुग्रही प्रतिज्ञा का ध्यान कर वह इस विषय को परमेश्वर के पास ले गया और उससे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। स्वप्न में उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। लाबान की अनुपस्थिति ने निकासी का अवसर प्रदान किया। भेड़ बकरियों और मवेशियों को जल्द से एकत्रित किया गया और आगे भेज दिया गया, और अपनी पत्नियों, बच्चों और दासों सहित याकूब ने फरात नदी को पार कर कनान की सीमा पर गिलाद देश की ओर रुख किया। 3 दिन पश्चात लाबान को उनके भागने का समाचार मिला और उसने 7 दिन तक उसका पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसे जा पकड़ा। वह अत्यंत क्रोधित था और उन्हें लौटने को बाध्य करना चाहता था। ऐसा करवा पाने में उसे कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उसकी टोली ज्यादा शक्तिशाली थी। पलायक गहरे संकट में थे। उसने अपनी शत्रुतापूर्ण योजना को क्रियान्वित नहीं किया, क्योंकि यथार्थ में अपने दास की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने स्वयं मध्यस्थता की। लाबान ने कहा, तुम लोगों को हानि पहुंचाने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहें, याकूब को न तो तू भला कहना और न बुरा, जिसका तात्पर्य है कि न तो उसे याकूब को लौटने के लिए बाध्य करना था और न ही मन भावने प्रलोभनों द्वारा आग्रह करना था। लाबान ने अपनी पुत्रियों के दहेज को हड़प लिया था और याकूब के साथ चातुर्य और कठोरता से व्यवहार किया था, लेकिन अब विशेष रूप से भावनाओं को छुपाते हुए उसने याकूब को चुपके से भाग आने के लिए उलाहना दी कि ऐसा करने से उसने पिता को विदाई उत्सव का या अपनी पुत्रियों और उनकी संतानों को विदा करने का अवसर नहीं दिया। प्रत्युत्तर में याकूब ने लाबान की स्वार्थी व लालची युक्ति को सामने रखा और उसे स्वयं की निष्ठा और नेक नियति का साक्षी मानते हुए विनती की, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू मुझे खाली हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती रात तुझे डांटा। लाबान इन तथ्यों को झुठला न सका और अब उसने शांति की वाचा बांधने का प्रस्ताव रखा। याकूब ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और संधि के प्रतीक के रूप में पत्थरों को लेकर एक ढेर खड़ा किया। लाबान ने इस खंभे का नाम मिज़्पा, यज्ञ सहादूधा रखा और कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी होगा जब हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। और लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर और ये खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इस ढेर को पार कर तेरे पास जाऊंगा, ना तू इस ढेर और खंभे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करें। तब याकूब ने इसहाक के भय के नाम से शपथ ली। रात मैत्रीपूर्ण बातचीत में बिताई गई और भोर को लाबान अपने जनसमूह के साथ लौट गया। इस अलगाव के साथ मेसोपोटामिया के निवासियों और अब्राहम की संतानों के बीच संबंध का नाम और निशान मिट गया।